वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 39 की तिलावत सुने।
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
ये वे लोग हैं जो ईश्वर के संदेश पहुंचाते हैं और उससे डरते हैं और ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरते, और हिसाब के लिए ईश्वर काफी है।
पिछले कार्यक्रम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने और पैगंबर द्वारा उनसे निकाह किए जाने की घटना का उल्लेख हुआ था, और ईश्वर के इस आदेश का वर्णन किया गया था कि पैगंबर इस्लाम और उनसे पहले वाले पैगंबरों को ईश्वरीय आदेशों के पालन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए और लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए।
ये आयत कहती है कि ईश्वरीय पैगंबरों का मूल दायित्व बिना किसी डर व भय के ईश्वरीय संदेश को पहुँचाना है। वे केवल ईश्वर से डरते हैं और उसके अलावा किसी के भी भय को अपने दिल में नहीं आने देते। स्वाभाविक है कि गलत सामाजिक परंपराओं व रीति रिवाजों या लोगों की अनुचित इच्छाओं के सामने डट जाने पर उनकी धमकियों व परिहास का सामना करना पड़ता है। अतः बहुत से लोग ये जानने के बाद भी कि जो काम वे कर रहे हैं गलत है, लोगों की बातों के भय से अपनी बुद्धि के फैसले के विपरीत वो गलत काम करते हैं।
ये ऐसी स्थिति में है कि ईश्वर के प्रिय बंदे और सच्चे ईमान वाले केवल ईश्वर को अपनी नज़र में रखते हैं और किसी की भी बातों व कटाक्षों से भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए ईश्वर काफ़ी है।
इस आयत से हमने सीखा कि धर्म के प्रचार के लिए ईश्वर से भय व उस पर भरोसे व साहस व गंभीरता की आवश्यकता होती है, और जिसमें ये विशेषताएँ न हों वो धर्म के प्रचार के काम में सफल नहीं हो सकता।
धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा की राह में ईमान वालों को जो कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं उनका हिसाब ईश्वर के पास सुरक्षित है।
आइए अब सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 40 की तिलावत सुने।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पुरुषों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर के पैगंबर और अंतिम नबी हैं, और ईश्वर हर चीज का पूरा ज्ञान रखने वाला है।
पिछली आयतों का क्रम जारी रखते हुए ये आयत आरंभ में अज्ञानता के काल की एक परंपरा को नकारते हुए कहती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद के वास्तविक पिता नहीं थे, बल्कि जैद उनके मुंह बोले बेटे थे, और धार्मिक आदेशों के अनुसार मुंह बोले बेटे की तलाक दी हुई पत्नी से विवाह में कोई रुकावट नहीं है, चाहे इसे अज्ञानता की परंपराओं में बुरा ही क्यों न समझा जाता हो।
यह आयत ईमान वालों को संबोधित करते हुए कहती है कि पैगंबर को अपनी तरह न समझो कि तुम में से हर एक के बाल बच्चे हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को तुम अपना मुख्य दायित्व समझते हो, और पिता पुत्र के प्रेम के चलते जीवन में तुम सबकी विभिन्न आकांक्षाएं हैं, जबकि वे एक पूरे समुदाय के पिता हैं और उन्हें पूरे समुदाय के हितों के अनुसार कदम उठाना है ताकि ये समुदाय प्रलय तक ठोस व मजबूत रहे और ईश्वरीय आदेशों का पालन करता रहे।
यह आयत आगे चलकर एक मूल विषय की ओर संकेत करती है जो पैगंबर इस्लाम के अंतिम ईश्वरीय दूत होने का सिद्धांत है, और कहती है कि पैगंबरों के बीच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशेष स्थान है। वे ईश्वर के पैगंबर भी हैं और अंतिम ईश्वरीय दूत भी हैं। ईश्वर ने उन्हें अपना अंतिम पैगंबर बनाया है और उन्होंने मानवता को सबसे व्यापक और संपूर्ण शिक्षाओं व कार्यक्रमों का तोहफा दिया है।
ईसाई से हमने सीखा कि इस्लाम अंतिम ईश्वरीय धर्म और कुरान मजीद अंतिम ईश्वरीय किताब है जो ईश्वर ने मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए भेजी है।
पैगंबर इस्लाम का अंतिम ईश्वरीय दूत होना ईश्वर के असीम ज्ञान के आधार पर है और वो जानता है कि उनकी पैगंबरी से लोक परलोक में सौभाग्य के मार्ग की पहचान की मनुष्य की जरूरत की पूर्ति होती है।
आइए अब सूरह अहज़ाब के आयत क्रमांक 41 और 42 की तिलावत सुने।
हे ईमान वालो, ईश्वर को बहुत अधिक याद करो और प्रातःकाल और संध्या के समय उसका गुणगान करते रहो।
ये आयतें ईमान वालों को हर स्थिति में ईश्वर की याद और गुणगान की सिफारिश करती हैं और कहती हैं कि दिन भर में मनुष्य की निश्चेतना का कारण बनने वाली चीज़ें बहुत अधिक हैं, चाहे वे आंतरिक इच्छाओं जैसे आंतरिक कारण हों या फिर शैतानी उकसावे और बुरे लोगों जैसे बाहरी कारण हो। स्वाभाविक है कि मनुष्य को अपने घेरे में लेने वाले विभिन्न कारकों से संघर्ष के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम सदैव ईश्वर की याद में रहें।
सुबह, दोपहर व शाम के समय फज्र, जुहर, असर, मगरिब व ईशा की नमाज पढ़ना इस ईश्वरीय सिफारिश का केवल एक भाग है, लेकिन मनुष्य को दिन रात के हर भाग में निरंतर ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। उसे अपने हर कदम और हर फैसले से पहले इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि ईश्वर उसके इस कदम या फैसले से राजी है या नहीं। अगर ईश्वर राजी हो तो वो कदम बढ़ाए और अगर वो राजी ना हो तो उस काम को छोड़ दे, चाहे वो काम उसकी इच्छाओं या लोगों के आग्रह के विपरीत ही क्यों ना हो।
हर स्थिति में ईश्वर की याद हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम उसकी अनुकंपाओं पर कृतज्ञ रहें, समस्याएं व कठिनाइयां आने पर धैर्य व संयम से काम लें, पाप का सामना होने पर ईश्वर से डरें और पाप कर देने पर ईश्वर से क्षमा चाहें और तौबा करके उसकी ओर लौट आएं।
अलबत्ता ईश्वर की ओर हार्दिक ध्यान के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों में कुछ शाब्दिक जिक्रों व दुआओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को एक जिक्र सिखाया था जिसे हर नमाज के बाद पढ़ने की बड़ी सिफारिश की गई है और कहा गया है कि हर नमाज के बाद 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहानअल्लाह कहना चाहिए।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर की याद केवल शाब्दिक नहीं होती बल्कि मनुष्य को अपनी हर सोच और हर काम में ईश्वर की प्रसन्नता को दृष्टिगत रखना चाहिए।
ईश्वर की याद उसी समय मनुष्य के लिए प्रभावी व निर्माणकारी होगी जब वह मौसमी व अस्थाई नहीं बल्कि निरंतर व स्थाई होगी।
ईश्वर को याद करने के लिए जिन शब्दों की सिफारिश की गई है उनमें उसे हर प्रकार की बुराई व दोष से दूर बताने वाले शब्दों पर अधिक बल दिया गया है।